हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहां हजारों कहानियां हैं आपके लिए। वेदांत के बार बार उठाने पर विहा की पलकें फड़फड़ाने लगी थीं। उसने कसमसाकर अपनी आंखें खोली और सामने वेदांत को देखकर उसके माथे पर बल पड़ गए। वेदांत ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए खिचड़ी बनाई है, चलो खा लो, बाद में ठंडी हो जाएगी तो बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। विहा ने कुछ नहीं कहा, बस शांति से वेदांत के चेहरे को देखने लगी। पता नहीं वो उसके चेहरे पर क्या ढूंढने की कोशिश कर रही थी। फिलहाल तो उसे बस उसके सर पर लगी चोट नजर आ रही थी, क्योंकि उसने खुद दी थी। वेदांत ने उसे संभालते हुए बेड पर बैठाया और फिर अपने हाथ में खिचड़ी की कटोरी लेते हुए उसे चम्मच से खिचड़ी खिलाने लगा। विहा ने भी ज्यादा नखरे नहीं किए और चुपचाप खाना खाने लगी, पर उसकी ये चुप्पी वेदांत को बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही थी। उसने खिचड़ी खिलाने के बाद विहा को पानी पिलाया और फिर दोनों हाथों में उसका चेहरा भरते हुए कहा, क्या हुआ टमेटो, क्या मुझे कुछ कहोगी नहीं? चलो अच्छा ना सही, शिकायत ही कर लो, तुम्हारी ये चुप्पी तो और भी ज्यादा बुरी लग रही है, बहुत हर्ट कर रही है। विहा ने कुछ बोलना चाहा, पर उसके शब्द उसके गले में ही अटक गए और पल भर में उसकी आंखें लाल हो गईं और उनमें पानी भर आया। वेदांत उसे रोता देखकर जल्दी से उसके और करीब आते हुए उसके गाल को चूमते हुए कहा, अरे बच्चा, रोने के लिए थोड़ी बोला है, गुस्सा करो मुझ पर, चलेगा, बोलो कुछ। ऐसा लग रहा था कि किसी भी पल वेदांत खुद भी रोने लग जाएगा, पर उसे पता था अगर वो रोएगा तो फिर विहा को चाहकर भी नहीं संभाल पाएगा। उसने आहिस्ता से विहा के सर को अपने कंधे पर रखा और उसकी पीठ को सहलाते हुए बोला, क्या बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है? मैं डॉक्टर को बुलाऊं, वो पेन रिलीफ का इंजेक्शन लगा देंगे, उसके बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। विहा ने अपनी आंखें बंद करके धीरे से कहा, आई एम सॉरी। और वेदांत की आंखें हैरानी से बड़ी हो गईं। उसने जल्दी से विहा को खुद से अलग किया और फिर से उसके चेहरे को अपने हाथों में भरते हुए कहा, बच्चा, तुमने ऐसा कुछ नहीं किया है जिसके लिए सॉरी बोला जाए। विहा ने अपने हाथ को उठाकर आहिस्ता से उसके माथे पर लगी चोट पर रखा और ये करते ही उसकी उंगलियां बुरी तरह कांपने लगीं। वेदांत ने जल्दी से उसके हाथ को अपनी चोट से हटाते हुए अपने होठों से लगाकर कहा, कोई बात नहीं है बच्चा, ये हो जाता है गुस्से में, नहीं पता चलता कि हम क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे हैं। तुम्हारी सिचुएशन मैं समझ सकता हूँ, ये सब कुछ तुमने जानबूझकर नहीं किया है और कहीं ना कहीं मेरी ही गलती थी। शायद मैं टाइम पर आ जाता तो आज ये सब कुछ नहीं होता, सो डोंट ब्लेम योरसेल्फ। तुम्हें जरा सा भी गिल्ट रखने की जरूरत नहीं है। अगर तुम स्माइल करोगी तो मैं सब कुछ भूल जाऊंगा जो इन दो दिनों में हुआ है, क्योंकि आखिर में मुझे बस तुम्हें खुश देखना है, बाकी किसी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। विहा का ध्यान अभी वेदांत की बातों से ज्यादा उसके माथे पर बंधी बैंडेज पर था। उसने अपने गले को तार करते हुए धीरे से कहा, फिर भी आई एम सॉरी, चाहे मैंने जानबूझकर किया हो या गलती से, पर आपको चोट तो लगी है ना? विहा की आवाज बेहद कमजोर थी, जिसे सुनकर वेदांत का दिल फटा जा रहा था। उसकी हमेशा चहचहाती रहने वाली बीवी दो दिन में कैसी बन गई है, उसने उसे कैसे क्या बना दिया है। उसने फिर से विहा को अपनी बाहों में समेटते हुए कहा, ठीक है बच्चा, सो जाओ अभी, ऐसा लग रहा है तुम बहुत ज्यादा थकी हुई हो। विहा ने धीरे से हाँ कहा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। उसे कब वेदांत की बाहों में नींद आ गई उसे खुद भी पता नहीं चला, तो वहीं वेदांत पल भर के लिए भी नहीं सो पाया था। उसकी नजरें अब बस सीलिंग को घूर रही थीं। राधे श्याम और काशी भी अब वापस राजस्थान जा रहे थे और माधवी और राधिका घर जा रही थीं। अस्पताल में सिर्फ निवेदिता, अनाही और रूहान रुकने वाले थे। उसमें भी अनाही ने बहुत रिक्वेस्ट की थी रूहान से यहाँ रुकने के लिए, तब जाकर वो माना था, वरना उसने बोला था कि वो अपनी मैडम जी को यहाँ से लेकर चला जाएगा। उसे इस अस्पताल की वाइब अच्छी नहीं लग रही थी। अगली सुबह विहा की जब आंखें खुलीं तो उसने देखा कि दो बाहों ने उसकी कमर को मजबूती से पकड़ रखा था। उसने नजरें उठाकर देखा तो वो वेदांत था, जिसकी बस अभी अभी आंख लगी थी। विहा के ऐसे हिलने से तुरंत ही वेदांत ने आंखें खोलते हुए कहा, क्या हुआ टमेटो, आर यू ओके? विहा ने धीरे से कहा, गुड मॉर्निंग। ये सुनते ही वेदांत ने जल्दी से कमरे की खिड़की की तरफ देखा, जहां से अब हल्की धूप छनकर आ रही थी, और उसने हैरानी से कहा, इतनी जल्दी सुबह हो गई? विहा कुछ बोल पाती उससे पहले ही बाहर से किसी ने दरवाजा खटखटाया और वेदांत ने आहिस्ता से विहा को बेड पर सुलाते हुए खुद बेड से खड़ा हो गया। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो उसकी आंखें फिर से छोटी हो गईं, क्योंकि हाथों में कॉफी लिए रूहान खड़ा था और वो वेदांत की तरफ नहीं देख रहा था। वेदांत ने भी आखिर में उसके हाथ से वो प्लेट ले ली। इसके बाद रूहान ने झांकते हुए कमरे के अंदर देखा और फिर वेदांत के बगल से अंदर जाकर वो टिफिन ले जाने लगा जो रात को उसने वहां रखा था। टिफिन का खाना वैसा का वैसा रखा था, वेदांत ने एक निवाला तक नहीं खाया था। ये देखकर रूहान ने दांत पीस लिए। फिर वो तेज कदमों से वार्ड से बाहर चला गया
उसने वो खाना डस्टबिन में डालते हुए गुस्से में कहा। अगर मैडम जी को पता चला कि वेदांत भाई ने खाना नहीं खाया है तो मुझ पर ही गुस्सा करेंगी। और वेदांत भाई भी क्या बच्चों वाली हरकतें कर रहे हैं, पूरा खाना वेस्ट कर दिया। फिर वो टिफिन उस कमरे में ले गया जहां निवेदिता और अनाही बैठकर आपस में बातें कर रही थी। उस टिफिन को देखकर अनाही ने उम्मीद से कहा, क्या वेदांत जी ने खाना खा लिया था? रूहान ने जल्दी से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, उन्होंने सारा खाना खा लिया था और वीहा ने भी खिचड़ी खा ली थी, इस टिफिन में कुछ नहीं है। ये सुनकर अनाही के होठों पर छोटी सी स्माइल आ गई तो वहीं निवेदिता के चेहरे पर भी सुकून उतर आया। कॉफी पीने के बाद भी वीहा चुपचाप बेड पर बैठी थी। डॉक्टर नेहा ने उसका चेकअप किया और फिर वेदांत की तरफ देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अब आपकी वाइफ काफी हद तक ठीक हो चुकी है, अब इन्हें बस बेड रेस्ट की जरूरत है जो ये घर पर भी कर सकती हैं, तो आप इन्हें घर ले जा सकते हैं। ये सुनकर वेदांत खुश हो गया और फिर वो जल्दी से बोला, ठीक है डॉक्टर, मैं अभी डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी कर देता हूँ। इतना बोलकर वेदांत डॉक्टर के साथ कमरे से बाहर चला गया और वीहा वहीं बैठी रह गई। वो अपने हाथों की तरफ देख रही थी। दो दिन में ही वो बहुत ज्यादा दुबली पतली हो गई थी, उसके हाथ बिल्कुल सूखी हड्डी की तरह लगने लगे थे। उन्हें देखकर वीहा ने गहरी सांस ली और फिर अपनी आंखें बंद करते हुए कहा, रूहान जी, अगर आपको मुझे बच्चे नहीं देना था तो फिर इतनी सारी उम्मीद देने की क्या जरूरत थी? मैं पहले खुश थी अपने पति के साथ, आपने मुझे उम्मीद दिखाई और फिर उसे इतनी बुरी तरह तोड़ दिया। अब मैं उन गिफ्ट का क्या करूंगी, उन खिलौनों का क्या करूंगी? मुझे मेरा बेबी चाहिए, कोई क्यों नहीं समझ रहा है? सब लोग बोल रहे हैं कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर कैसे? जो इंसान मर चुका है वो वापस कैसे आ सकता है? और उसके आने के बिना तो कुछ भी ठीक नहीं होगा, सब कुछ ही मुझे गंदा लगेगा। पर मैं ये किससे कहूँ? जब भी मैं किसी से कहने की कोशिश करती हूँ वो पहले ही मेरा मुंह बंद कर देते हैं, ये बोलकर कि अब कुछ नहीं बदल सकता है। और ये सही है, पर ये सही बिल्कुल नहीं है। वीहा बुरी तरह कंफ्यूज हो गई थी और वो सिवाय रूहान को शिकायतें लगाने के कुछ नहीं कर सकती थी।
दोपहर के करीब 1 बजे वे सब लोग वापस निमानी हाउस पहुंच चुके थे। फिलहाल सब लोगों ने वीहा के कमरे में भीड़ जमा रखी थी। वे उससे बातें करके उसका मन बहलाने की कोशिश कर रहे थे, पर वीहा किसी की बातों का जवाब नहीं दे रही थी, बल्कि धीरे धीरे उसे गुस्सा आ रहा था। वो अकेले रहना चाहती थी और आखिर में जब उसे बर्दाश्त नहीं हुआ तो उसने चिल्लाते हुए कहा, आप लोगों के सवाल जवाब खत्म हो गए हों तो क्या मैं थोड़ी देर रेस्ट कर सकती हूँ? चले जाओ सब यहाँ से, मुझे किसी से बात नहीं करनी है।